नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लो सवसाहूनं ईसु पंच नमो यारो सव पाव पणासन मंगलानं च सवेसिं पढ़मं हवै मंगलं चत्तारि मंगलं अरहंतु मंगलं सिद्ध मंगलं साहु मंगलं केवली पन्नतो धम्मो मंगलं चत्तारि लोगुत्तमा अरहंत लोगुत्तमा सिद्ध लोगुत्तमा साहुलोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहंत शरणं पवज्जामि सिद्ध शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतो धम्मो शरणं पवज्जामि क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः काल खिली न खिली मलयाचल की शुचि शीतल मंद समीर बयार चली न चली कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट झिली न झिली भजले अरिहंत अरि रसना फिर अंत समय में हिली न हिली
पूर्व सत्रों में कुछ ऊहापोह का विषय था, कुछ विचार विमर्श चल रहे थे कि जिनेंद्र भगवान क्या क्या कर सकते हैं, जिनेंद्र भगवान में क्या क्या देने की क्षमताएं हैं, इस पर अपन विचार कर रहे थे। तो जैसा आपको स्मरण होगा, तत्वार्थ सूत्र में अरहंत प्रभु के नौ क्षयिक भावों का वर्णन है। कर्मों के क्षय से होने वाली जो परिणति होती है उसको क्षयिक भाव कहते हैं। तो जिनेंद्र भगवान के पास मोहनीय कर्म का क्षय होने से क्षयिक सम्यक्त और क्षयिक चारित्र है। जिनेंद्र भगवान के पास ज्ञानावरण का क्षय होने से क्षयिक ज्ञान है, जिसको अपन केवल ज्ञान कहते हैं, जिसको अपन दिव्य ज्ञान कहते हैं, जिसको अपन अतीन्द्रिय ज्ञान कहते हैं, जिसको अपन परम ज्ञान कहते हैं, जिसको उत्कृष्ट ज्ञान भी कहा जाता है। दर्शनावरण कर्म के क्षय से जिनेंद्र भगवान के पास केवल दर्शन है, केवल दर्शन होने से भगवान सर्वदर्शी है। तो सर्वज्ञ और सर्वदर्शित्व ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के क्षय से भगवान को प्राप्त है। इसके पश्चात अंतराय कर्म के चार बल्कि पांच भेद होते हैं और इन सबको मिलाकर चार घातिया कर्मों से संबंधित चार घाती कर्मों का क्षय होने पर अनंत चतुष्टय प्रकट होता है। वस्तुतः वो मात्र चार नहीं है, वो नौ है। उसमें सबसे बलवान अनंत शक्ति होती है, अनंत वीर्य होता है, इसलिए उसको प्रधान रूप से लेकर बाकी चार को गौण कर देते हैं। और इधर अनंत सुख जो है उसके विषय में पद्मनंदी पंचविंशतिका में सिद्ध भक्ति के अंतर्गत ऐसा उल्लेख है कि दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी यानी मिथ्यात्व और कषाय इनका नाश हो जाने से जो दो शक्तियां प्रकट होती है क्षयिक सम्यक्त्व और क्षयिक चारित्र वो दोनों एक रूप होकर अनंत सुख बन जाती है। और ये बड़ी विचित्र बात है कि सुख का संबंध वेदनीय कर्म के साथ होते हुए भी यहां पर ऐसा कथन है पद्मनंदी पंचविंशतिका में कि मोह के नाश से सुख होता है। इसका अभिप्राय यह है कि मोह ही दुख है, बाकी जो लौकिक जगत में जिसको दुख कहा जाता है वो एक संस्कार मात्र है कि ऐसी चीज मिलेगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, ये जो धारणा बनी हुई है, तो फिर उन सामग्रियों के उपलब्ध होने पर कष्ट होता है, वो धारणागत कष्ट है। तो सामग्री की प्राप्ति साता और असाता वेदनीय से होती है और सुख और दुख का वेदन भी साता और असाता वेदनीय के कारण होता है, पर जीव सुखी और दुखी जो होता है वह कषायों से होता है। ये बड़ा सुखी आदमी है बोलते हैं, तो ये बड़ा सुखी आदमी है का मतलब वो भी अपने आप को कहता है कि मैं बहुत सुखी हूं। सुख होना अलग वस्तु है और सुखी होना अलग वस्तु है। सुख किसी अघाती कर्म से प्राप्त हो रहा है और सुखी जो है वो घाती कर्म से हो रहा है। दुख अघाती कर्म से प्राप्त हो रहा है और दुखी घाती कर्म से हो रहा है। इसलिए मिथ्यात्व और कषायों के क्षय से भगवान अनंत सुखी होते हैं, उनके पास अनंत सुख होता है। वेदनी का उदय चल रहा है लेकिन फिर भी वो अनंत सुखी है। अनंत सुख मोहनी के क्षय से होता है तो फिर मोहनी का क्षय तो दशम गुण स्थान में हो जाता है, तो फिर ग्यारहवें बारहवें बल्कि अपन क्षय की बात कर रहे हैं तो बारहवा गुणस्थान आएगा, ग्यारहवा छोड़ देना, बारहवें गुणस्थान में अनंत सुख क्यों नहीं होता उनको? तो उसका उत्तर है कि कर्म का क्षय होने पर भी सुख का भंडार होते हुए भी अनंत ज्ञान और अनंत शक्ति के बिना वो सुख मात्र विद्यमान है, उसकी कोई अनुभूति हो नहीं सकती, क्योंकि अनंत सुख की अनुभूति के लिए अनंत ज्ञान अनिवार्य है। और जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ है तब तक के ज्ञान अनंत नहीं है, सीमित है। तो इसलिए केवल ज्ञान के बाद वो अनंत सुख पूर्णतः अभिव्यक्त होता है। और एक अपेक्षा से देखो तो तत्सुखम यत्र ना सुखम, अरंत भगवान की बात कर रहे हैं। गुणभद्राचार्य महाराज ने आत्मानुशासन ग्रंथ में लिखा है कि सुख वो है जिसमें दुख ना हो। संसार के सारे सुख ऐसे सुख हैं जहां पर दुख का भी कुछ ना कुछ समावेश है। सुख हो रहा है लेकिन साथ में आकुलता भी लगी हुई है, तो फिर वो सच्चा सुख नहीं है। अब यहां क्या होता है कि घाती कर्म जो उदय में है, मोहिनी का नाश हो चुका है, लेकिन बाकी तीन जो घाती कर्म है उसमें से अंतराय के उदय से अनंत शक्ति अटकी हुई है, रुकी हुई है। ज्ञानावरण के उदय से अनंत ज्ञान रुका हुआ है, दर्शनावरण के उदय से अनंत दर्शन रुका हुआ है। तो रुकावट कोई सुख थोड़ी है। तो उन रुकावटों के नाश हो जाने पर, उनका नाश हो जाने पर अनंत सुख, वहां अनंत चतुष्टय में भगवान में स्वीकार किया गया है। परमात्मा अवस्था से पूर्व अनंत सुख नहीं है, ऐसा है। मोह का नाश होने पर भी कुछ सहकारी की आवश्यकता है, इसलिए ऐसा कथन। अब इसके बाद तो अंतराय के क्षय से पांच शक्तियां प्रकट हुई है। तो भगवान के अंदर जो नौ क्षायिक लब्धियां हैं, उन नौ क्षायिक लब्धियों में सुख का कथन नहीं है। अनंत चतुष्टय की बात करते हैं तो सुख की बारी आती है, सुख की चर्चा निकलती है। तो नौ जो शक्तियां हैं भगवान में, उसमें अनंत क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक चारित्र, क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग और क्षायिक वीर्य, ये नौ शक्तियां भगवान में होती है। और इन नौ शक्तियों में अपन ने दान की चर्चा की थी कि भगवान दाता है और भगवान क्या क्या दे सकते हैं, उस पर अपनी चर्चा चल रही थी। तो अपन ने जब आचार्य कुंदकुंद स्वामी के वचन पढ़े अष्टपहाड़ में, तो फिर वहां पर अपन ने देखा कि भगवान वीतराग है, कुछ लेते देते नहीं है। ये जो बात अपन सुनते आ रहे हैं उसमें थोड़ा संशोधन हो गया, भगवान कुछ लेते नहीं है, इतनी बात निरापद है, इसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन भगवान कुछ देते नहीं है, ये जो धारणा थी उसका निराकरण हुआ और ये पता चला कि भगवान जो देते हैं वो कोई अन्य नहीं देता, भगवान सबसे बड़े दाता है, ये जानकारी अपने को प्राप्त हुई थी। तो इसमें देखिए आप, गाथा में ये था, सो देवो जो अथम धम्मम काम सुदेई नाणम च, चार पुरुषार्थों के नाम दिए हैं और फिर आचार्य कह रहे हैं कि चारों पुरुषार्थ देने वाले हैं। और सुदेई, सु शब्द और जुड़ा हुआ है, सु का अर्थ होता है अच्छे ढंग से देने वाले, देव है, जो देवे वो देव, और देव कौन, देव गति वाले देव नहीं, यहां पर अरहंत देव है। सो देई जस अथि हूं, और कौन दे सकता है, तो आचार्य कहते हैं एक न्याय बता रहे कि वही दे सकता है जिसके पास हो, जिसके पास कुछ नहीं है वो कैसे दे सकता है। तो भगवान ने दीक्षा काल में भले ही सब कुछ त्याग दिया हो, लेकिन जब उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ तब उनके अंदर जो शक्तियां प्रकट हुई, उन शक्तियों में दातृत्व नामक जो गुण है वो भी प्रकट हुआ। और दातृत्व गुण प्रकट हुआ इसका अर्थ यह हुआ कि उनके पास देने की शक्ति आ गई। और अब वो क्या क्या दे सकते हैं, बोलते उनके पास क्या क्या है, देखिए आप, अथो धम्मो ये पवज्जा, देने योग्य उनके पास सब कुछ है, अर्थ यानी भंडार है उनके पास। वो कैसे देते हैं, वो उसके प्रति स्वामित्व रखते हैं, मूर्छा रखते हैं, नहीं रखते हैं, ये अलग विषय है। जिस प्रकार एक दातार किसी याचक को कुछ देता है मनुष्य लोक में, तो उसकी पद्धति अलग होती है। लेकिन यहां जिनेंद्र देव जो हैं, वो किस ढंग से देते हैं ये पाने वाले को पता नहीं चलता, पर पाने वाले को इतना पता चल जाता है कि मुझे मिल गया, जो मेरे पास नहीं था वो मुझे मिल गया, ये उसको बोध हो जाता है। तो अथो एक बात हुई, फिर दूसरी बात हुई धम्मो धर्म, ये भी भगवान प्रदान करते हैं। कैसे कैसे पापी जीव भगवान की शरण में आकर के धर्मात्मा बन गया। और यह शब्द से काम भी ग्रहण करना है, काम से एक सांसारिक सुख है, और काम पुरुषार्थ जो होता है वो संतान प्राप्त करने के लिए एक प्रक्रिया होती है, उसके लिए बड़े नियम संयम का भी उल्लेख है शास्त्रों में। जैसा हमने पूर्व सत्र में कहा था कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके यहां पर पुत्र नहीं है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके यहां पर संतान नहीं है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पुत्री नहीं है, तो फिर इन सब के बारे में उल्लेख मिलता है शास्त्रों में और रहस्य ग्रंथों में और ज्योतिष और मंत्र शास्त्रों में। एक बड़ी विचित्र जानकारी आती है और उसका प्रतिकार करने पर वो बाधा दूर भी हो जाती है। अभी 3 दिन पूर्व भट्टारक स्वामी चारुकीर्ति जी ने इसकी चर्चा निकाली थी। उन्होंने कहा कि रहस्य ग्रंथ होने के कारण हम उन ग्रंथों की कारिकाओं को सार्वजनिक नहीं कर सकते, उसकी पात्रता आचार्यों में होती है, इसलिए वो सार्वजनिक की जाने वाली वस्तु नहीं है। लेकिन जानकारी की बात उन्होंने ये बताई कि निसंतान लोगों ने, और ये कथन सर्वमान्य है, यानी मात्र जैन परंपरा तक सीमित नहीं है, ये इतर संप्रदायों में भी ये कथन मान्य है कि निसंतान होने का प्रधान कारण सर्पवध। हम लोगों के लिए बिल्कुल विचित्र और नवीन जानकारी थी, पर उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग सांपों को मार डालते हैं और भवांतर में वो निसंतान होते हैं। तो यदि वो उसका प्रायश्चित करें, तो प्रायश्चित की पूरी प्रक्रिया है, भट्टारक स्वामी जी के पास पूरी है, वो सर्पवध के प्रायश्चित की जो उस रहस्य ग्रंथ में बताई हुई प्रक्रिया। अब एक व्रती के द्वारा अगर किसी सर्प का घात हो जाता है, कई बार ऐसा हो जाता है ना कि आप यात्रा कर रहे हैं और गाड़ी के नीचे सांप आ गया, तब जो प्रायश्चित होता है वो अलग होता है। लेकिन यहां पर पूर्व भव में जिन्होंने सर्प का वध किया उनके लिए एक अलग प्रक्रिया होती है, और उस प्रक्रिया को जब वो संपन्न करते हैं तो निसंतान के यहां संतान होती है। ऐसे कितने केसेस हैं जहां पर साइंस ने कह दिया कि पति और पत्नी में कोई फिजिकल डिसेबिलिटी या कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि इनको संतान न हो, लेकिन नहीं होती, वर्षों गुजर जाते हैं नहीं होती। पुणे में एक सज्जन को 53 वर्ष की उम्र में प्रथम संतान हुई, तो न तो वो नारी बांझ है और न ही वह पुरुष अक्षम है, लेकिन ऐसा होता है तो कोई ना कोई कर्म तो होगा ना, बिना कारण के कोई घटना नहीं होती, कोई कार्य नहीं होता। तो ये रहस्य 3 दिन पहले जानने को मिला कि ऐसा भी होता है, और उसका प्रतिकार करने पर, प्रायश्चित करने पर उन जीवों को संतान की प्राप्ति होती है। हम कोई उपदेश नहीं दे रहे हैं, ये हम केवल जानकारी दे रहे हैं कि ऐसा भी है, और बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जिन जानकारियों के अभाव में बहुत से जैनियों को लगता है कि ये सब क्या पागलपन है। ऐसा लगता है कि अपन किसी भी अनुष्ठान को, किसी भी प्रक्रिया को उतावली में मिथ्यात्व कह डालते हैं, जबकि वो हो सकता है कि कोई विधि हो। वो दृष्टिवाद नाम का जो 12वां अंग है, उस 12वें अंग में जल पर चलने की विधि है, भूमि में प्रवेश करने की विधियां हैं, आकाश में गमन करने की विधियां हैं, कई मंत्र दिए हुए हैं उसमें। उन मंत्रों में से कुछ मंत्र तो आज भी उपलब्ध है। नमक छोड़ करके अगर उन मंत्रों की कोई आराधना कर लेता है कुछ कालावधि तक, तो फिर वो भूमि से ऊपर चलने में समर्थ होता है और एक योजन तक चल सकता है, 13 किलोमीटर तक वो भूमि से ऊपर चल सकता है। ऐसी बहुत सारी विधियां दी है, पर वो गुरुओं की कृपा बिना वो विधियां हानिकारक भी हो सकती है। तो इसलिए अपने को थोड़ा समझना होगा, क्या है कि मात्र आत्मा के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया और कुछ बोलने की कुशलता प्राप्त कर ली। हमारे दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज कहते हैं कि भीड़ को सीधी कर लेने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता, और रीढ़ को सीधी कर लेने से कोई ध्यानी नहीं हो जाता। बहुत बहुत विनम्र बनना होगा अभी अपने को। सम्यक तो बड़ी दूर की चर्चा है, उद्दंडों को सम्यक की प्राप्ति नहीं होती, अत्यंत विनीत होना होता है। अपन अभी निर्णायक न बने, न्यायाधीश बनने की अभी अपनी क्षमता नहीं है, इसलिए किसी को भी मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि बोल करके अपने आप को ऊंचा सिद्ध न करें। बिल्कुल विनम्र रहना है, अनायतन की मुद्रा में भी कदाचित सम्यक तो पाया जा सकता है। अभी आपको सुनकर बड़ा अचंभा होगा, लेकिन अगर हम उदाहरण देंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। समंत भद्र आचार्य महाराज का नाम सुना ना आपने, जब वो आचार्य नहीं थे और जब वो रोग का उपचार करने के लिए दीक्षा से नीचे उतरे थे, अर्थात उन्होंने दीक्षा छोड़ी थी। आप कल्पना कर सकते हैं दीक्षा छोड़ना कितना भारी होता है, लेकिन कर्म का प्रचंड उदय था उनके, उनको भस्मक व्याधि हो गई थी, तो उनको दीक्षा छोड़नी पड़ी थी। गुरु ने कहा कि संलेखना का काल नहीं है अभी तुम्हारा, दो ही वाक्य कहे गुरु ने। उनने कहा कि मेरी व्याधि के साथ साधुचर्या नहीं पल सकती, मैं संलेखना चाहता हूं। तब गुरु ने दो बातें कही कि अभी संलेखना का काल नहीं है, और तुम्हें जिन शासन के ध्वज को बहुत ऊपर उठाना है, और जो प्रभावक होते हैं उनके लिए साधुओं के सामान्य नियम लागू नहीं होते, उनके लिए कुछ विशेष नियम होते हैं, इसलिए बस यही कहूंगा कि तुम्हें जिन शासन की बड़ी भारी प्रभावना करनी है। तो सामंतभद्र ऐसे चिंता में पड़ गया, ऐसे बैठ गया बिल्कुल गुरु के सामने, और फिर विनम्र भाव से कहते हैं कि गुरुवर, आपने जो दो बातें कही हैं मैं उनका पालन करता हूं। चले गए। और अब मुनि अवस्था में तो वो संभव था नहीं, तो उनको संयम से नीचे आना पड़ा। वो संयम साधु को प्राणों से भी अधिक प्रिय होता है। प्राण चले जाए तो उनकी मुस्कान नहीं छीन सकती, उनका आनंद भग्न नहीं होता, लेकिन संयम का वियोग होने पर वो उनके लिए असहनीय होता है। उन्होंने छोड़ा और यही भावना थी उनकी कि मैं शीघ्रातिशीघ्र व्याधि मुक्त होकर पुनः संयम धारण कर लूंगा। कहां कहां भटके वो, अनेकानेक उपचार किए, लेकिन जब लाभ नहीं हुआ तो अंततः वाराणसी पहुंचकर उन्होंने जो मुद्रा धारण की उसको जैन शास्त्रों में आयतन के अंतर्गत नहीं परिगणित किया गया है। अनायतन की मुद्रा में उन्होंने उपचार किया अपना और वो स्वस्थ हो गए। 8 दिन में उनकी व्याधि समाप्त हो गई। और जब राजा को पता चला कि भेष कुछ और है और अंदर से ये कुछ और है, तो फिर जो घटना होती है आपको पता ही होगा कि उनको आदेशित किया जाता है कि तुम हमारे आराध्य की आराधना करो। सामंतभद्र उत्तर देते हैं कि आराध्य और आराधक का संबंध हृदय का संबंध होता है। किसी को बलपूर्वक आराधक नहीं बनाया जा सकता, और मेरा मस्तक मेरे आराध्य के प्रति नत होता है, अन्यत्र नहीं। मुझे किसी से राग द्वेष नहीं है। तब राजा कहता है कि हम नहीं जानते ये तुम्हारी बातें क्या है, तुम्हारे सिद्धांत क्या है, तुम्हारी मान्यताएं क्या है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि तुम यहां पर इस वाराणसी की जनता के समक्ष विनय करो। वो बोलते हैं कि ठीक है, आपकी अगर भावना है तो प्रबंध कर लेना। तो प्रबंध कर लेना, इसका अर्थ राजा ने पुरोहित से पूछा कि क्या कहना चाह रहे। बोले पता नहीं, हो सकता है ये कोई सिद्धिधारी हो, इनके पास कुछ सिद्धियां हो, तो अपन उस वेदिका को सुरक्षित कर लेते हैं पहले, फिर इनको सामने बैठालकर अपन जो करना है करेंगे। तो उन्होंने पूरी वेदिका के चारों ओर लोह श्रृंखलाओं को बेष्टित कर दिया, और उसके बाद राजा ने कहा कल प्रातः यहां पर जो होना है वो होगा। सामंतभद्र रात में पहरे में थे, राजा ने पहरेदार लगा रखे थे और वो बैठे हुए थे शांत। मुद्रा वही थी जो वो धारण करके आए थे। निर्भीक शूरवीर और विद्वत शिरोमणि, कुछ संकेत मिले उनको रात्रि में और प्रातः काल वो जहां उनसे बैठने को कहा वहां बैठ गए और उन्होंने चतुर्विंशति स्तव प्रारंभ किया। बैठे बैठे स्तवन कर रहे थे, सबसे पहले वृषभदेव भगवान का स्तवन किया वंशस्थ छंद में, 12 अक्षरों का छंद होता है। फिर अजितनाथ शंभवनाथ भगवान का स्तवन उन्होंने उपजाति छंद में किया, फिर अभिनंदन भगवान का पुनः वंशस्थ छंद में, सुमतिनाथ भगवान, पद्मप्रभ भगवान, सुपार्श्वनाथ भगवान का स्तवन उन्होंने फिर उपजाति छंद में किया, और जब चंद्रप्रभ भगवान का वो स्तवन करने जा रहे थे तब उन्होंने पिछले 3 तीर्थंकरों के स्तवन वाला ही छंद चुना, उपजाति छंद, 11 अक्षरों का छंद होता है ये। उपजाति इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 2 प्रकार के छंदों का मिश्रण पाया जाता है। समवृत्त होता है, चारों चरण में 11 अक्षर होते हैं, और उस तब तक आचार्य महाराज उस अवस्था में, आचार्य तो भविष्य में बने थे लेकिन अभी वो जिस स्थिति में थे उस स्थिति में वो ऐसी स्तुति उन्होंने लिखी है, एक एक अक्षर, एक एक पद, एक एक पंक्ति, एक एक छंद अद्भुत है, दार्शनिक स्तुति है। वहां के जो विद्वान सुन रहे थे वो भी अचंभित थे स्तुति के अर्थ को सुन करके, क्योंकि सबको पहले लग रहा था कि कोई सन्यासी होंगे ऐसे बैठे होंगे, पर जब विद्वत्ता को देखा तो फिर राजा के जो बड़े बड़े विद्वान थे वो भी अचंभित थे कि ये कहीं कुछ लिखा हुआ भी नहीं है, ये एकदम से कैसे इन कठिन काव्यों की रचना कर रहे हैं, बोलते चले जा रहे हैं। फिर कुछ लोगों को ऐसा लगा कि हो सकता है कोई पुरानी स्तुति हो और फिर इनको कंठस्थ हो वो बोल रहे हैं, लेकिन वो जिस ढंग से बोल रहे थे उसको देख करके वहां के जो समझदार लोग थे वो समझ गए कि ये कोई रटी रटाई स्तुति नहीं है, ये अंदर से निकल रही है और क्या गूढ़ गंभीर अर्थ से परिपूर्ण है। अष्टम तीर्थंकर की जब स्तुति प्रारंभ, उनकी आंखें बंद थी, वो बिल्कुल खोए हुए थे। चंद्र प्रभं चंद्र मरीचि गौरम चंद्रं द्वितीयं जगतीव कांतम वंदेभिवंद्यं महतां ऋषींद्रं जिनञ्जितस्वान्तकषाय बंधम यस्यांग लक्ष्मी। वो पढ़ते चले जा रहे हैं और पहले ही काव्य में घटना घट चुकी है। वंदे भी वंदम, जैसे ही उन्होंने बोला वो तो अपने में खोए हुए थे भक्ति में, और वंदे बोलते समय ऐसे एक समय मात्र के लिए उनकी पलक बंद होकर खुली तो सामने चंद्रप्रभ भगवान थे। वो जंजीरें टूट चुकी थी और पूरी भूमि एक प्रकार से कंपित हो रही थी, और वो जो मध्य भाग था सामने की वेदिका का वो 2 भागों में विभाजित हो चुका था, और बीच से चंद्र प्रभ जिनेन्द्र की एक भव्य छवि वहां पर प्रादुर्भूत हो गई थी। बिल्कुल भक्ति से सराबोर होकर वो स्तुति को आगे करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं। राजा प्रजा चमत्कृत होकर अचंभित थी। सबके घुटने टिक चुके थे धरती पर, क्योंकि विद्वत्ता के साथ हृदय की पवित्रता, साधना और भक्ति का समावेश स्वर्ण में सुगंध के समान दुर्लभ है। प्राय करके विद्वानों के पास शब्द ज्ञान होता है, लेकिन हृदय की जो भावनात्मकता होती है वो सब विद्वानों में नहीं पाई जाती। और ये भक्ति करते चले जा रहे हैं, पता नहीं कितनी बार भक्ति के अश्रु भी प्रवाहित हो गए और शुष्क हो गए, कंठ न जाने कितनी बार गदगद होकर फिर अपनी पूर्व अवस्था में आया, देह भी न जाने कितनी बार पुलकित हो गई, रोंगटे खड़े हो गए और फिर सहज अवस्था में आ गई शरीर की त्वचा, हाथ भी कई बार भक्ति में जुड़ गए फिर कई बार एक भिन्न मुद्रा में आ गए। ये प्रक्रिया चलती रही, सहज रूप से चलती रही, वो कुछ कर नहीं रहे थे, सब अपने आप हो रहा था। और जब स्तुति संपन्न हुई, उन्होंने अपनी आंखें खोली, सामने भगवान थे। उनको पल भर के लिए लगा कि मैं कहां पर हूं, क्योंकि सच्ची भक्ति, सच्चा ध्यान जब लग जाता है तब स्थान का भान समाप्त हो जाता है। बैठे हैं या खड़े हैं, होश नहीं रहता, दिन है या रात है ये भी नहीं पता रहता, आसपास कौन है कुछ पता नहीं है। इतनी तन्मयता के साथ वो घटना घटित हुई उनकी भक्ति से, और आज तक वहां पर उनका प्रभाव विद्यमान है। हम दो बार उस स्थान पर होकर आए, जटिल स्थिति थी वहां पर, पास नहीं आने मिलता वहां किसी को, और अगर हाथ में पिच्छी देख ले कोई तब तो वो बिल्कुल अलग प्रकार से बर्ताव करते हैं, वहीं खड़े रहिए, वहीं, यहां मत आना। तो हमारा तो ये मानना है कि यदि कहीं प्रवेश नहीं मिल रहा है तो हम वहां पहुंच तो चुके हैं, ठीक है, अंदर नहीं जाने मिल रहा, तो हमारा पुण्य जब हमें वहां तक ले आया तो हम खाली हाथ क्यों लौटेंगे। जैसे गिरनार जी भी गए थे हम, तब वहां भी हमने पर्वत पर आरोहण करने से पूर्व अपने हृदय में सबके प्रति सद्भावना उत्पन्न कर ली थी, जो भी है ठीक है, वहां बहुत सारे लोग हैं, कई बाबा लोग हैं, कई और भी लोग हैं, वो अपनी समझ के अनुसार, अपने संस्कारों के अनुसार प्रवृत्ति कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमने अंदर अपने सबके प्रति क्षमा भाव धारण किया, सबके प्रति सद्भावना उत्पन्न की और सबको अपनी ओर से अपनी सकारात्मकता ही प्रेषित की, और उसके बाद हमने पर्वतारोहण किया। परिणाम ये निकला, होता ऐसा है कि प्राय करके वहां की स्थितियों को देखकर लोगों का मन खट्टा हो जाता है और असंतुष्ट होकर वो वापस लौटते हैं। जब हम वहां पहुंचे, सबसे ऊंची टोंक जो है गिरनार की, तीसरी टोंक है, 5000 पांचवी टोक जाते जाते हाल बेहाल इसलिए हो जाते हैं कि इतना नीचे ऊंची टोक से फिर नीचे उतरते हैं और फिर ऊपर चढ़ते हैं, अब हजारों सीढ़ियां हैं तो हालत वो हो जाती है। तो तीसरी टोंक से हमने पांचवी टोंक को देखा तो पांचवी टोंक थोड़ी नीचे दिखती है, तीसरी टोंक से आप देखेंगे ना स्पष्ट रूप से पांचवी टोंक नीचे है, और तीसरी टोंक पर बैठ करके हम वहां के जो बहुत सारे, आप सोचिए कि 72 कोड़ियों सत्त सया 72 करोड़ 700 मुनिराज वहां से मोक्ष गए, तो अच्छी तरह मन लगाकर वंदना करते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। तो जैसे तीसरी टोंक पर हम पहुंचे तो वहां पर भी एक बाबा थे, वो बाबा बोल हमें देख करके बोलते हैं कि स्वामी जी, स्वामी जी बोलते हैं अन्य मती लोग अपने को, आओ बैठो। हमने बोला हाँ बैठ रहे हैं। फिर हमने बैठ करके जो भी सिद्ध भक्ति और जो अनुष्ठान थे वो किए, और उसके बाद अचानक वो बोलता है कि हम इसलिए जैनियों पर हम चिल्लाते हैं कि हम चावल और बादाम हमें पसंद नहीं, बोले वो यहां जो भी आते हैं वो चावल बादाम चढ़ा करके चले जाते हैं, तो हम चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं, गालियां देते हैं, क्या करें, कोई बात ना माने तो गुस्सा तो आ ही जाता है। तो हमने थोड़ा सा मुस्कुराया, फिर उनने हमसे कहा कि आप थोड़ा और रुको मैं चाय लेकर के आता हूं। हमने कहा कि हम एक ही बार भोजन करते हैं, एक ही बार उसी समय हम पानी भी लेते हैं, तो हम और कोई वस्तु लेते नहीं है, तो आप कष्ट मत करो। तो उसने ऐसे हाथ जोड़ करके बड़े विनय के साथ हमें वहां से विदा किया। हम वहां से आए आगे, चौथी टोंक थी, फिर पंचम टोंक पर गए, तो पंचम टोंक पर भी उनने हमें बैठने दिया अच्छे से, और बैठ करके हमने कायोत्सर्ग सिद्ध भक्ति वगैरह की। यद्यपि वो लोग थोड़े ज्यादा कड़क लोग हैं पंचम टोंक वाले, फिर परिक्रमा भी की, और परिक्रमा में जो भगवान की छवि है उसकी भी भक्ति की, और उसके बाद फिर निकल करके आए। तो पहले से अगर अपन किसी के प्रति सद्भावना करते हैं तो उसके विचारों पर प्रभाव पड़ता है, ये हमारा वहां का अनुभव है। फिर आगे की जो प्रक्रिया है उस पर समाज जो विचार करना है वो करें, पर ऐसी घटना होती है। यहां वाराणसी में भी ऐसे ही हुआ, उन्हें रोका कि नहीं यहां नहीं आ सकते, तो हमने ऐसे करके कहा कोई बात नहीं हम यहीं से खड़े खड़े वो कर रहे हैं, और हमने स्वयंभू स्तोत्र पढ़ा। लगभग 5 से 7 मिनट होने पर उस पुजारी ने हमसे कहा कि आ जाइए बाबा जी, स्वामी जी यहां आ जाइए। हमारे साथ जितने लोग थे उनको बड़ा अचंभा हुआ कि ये क्या हो गया, अभी तो अलग तेवर थे और अभी एकदम परिवर्तन हो गया, क्या बात है। भोपाल वाले सुनील कुमार जैन थे, फिर अमरावती वाली दीदी भी थी, और वहां के साधवाद विद्यालय वाले विद्यार्थी भी थे, साधवाद महाविद्यालय वर्णी जी वाले जो है ना वाराणसी में, भदैनी घाट वाला, सुपार्श्वनाथ भगवान की भूमि वाला, वहां के विद्यार्थी भी थे। तो उन्होंने हमें पास में बुलाया और बुला करके वो आसन दिया, तो हमें लगा कि ये वही भूमि है जहां पर साक्षात स्वयं संबंध भद्र स्वामी ने स्वयंभू स्तोत्र के द्वारा 24 तीर्थंकर की आराधना की थी। तो फिर स्वयंभू स्तोत्र का अतिशय यहां नहीं होगा तो कहां होगा? हमने वही स्तोत्र तो पढ़ा है, तो फिर पुजारी ने हमें यहां पर बुलाया है, बहुत अच्छी बात, हम देखेंगे कैसा क्या है। और फिर वो वहां से फूल हटाने लगा, पूरे फूल भरे हुए थे वहां पर। हमने कहा कि नहीं, आप इतना सब मत कीजिए। बोले कि नहीं महाराज, हम आपको कुछ दिखा रहे हैं। उसने पूरे फूल हटा करके दिखाया, एक विशाल कम से कम 5 फुट का शिवलिंग था, और वो बीच में से इतना, उसमें एक इतना स्थान था। बोले कि ये है हमारे फटे महादेव। भले ही बोर्ड पर उन्होंने लिख दिया था समुद्रेश्वर महादेव, लेकिन सारे ऑटो ड्राइवर्स और वहां के जितने भी लोग हैं फटे महादेव के नाम से जानते हैं उसको। बहुत पुराना है, 1800 वर्ष पुराना वो स्थान है। उनने दिखाया, हमने बराबर देखा कि वो ऐसे 2 भागों में विभाजित है। तो उसको देख करके हमारा आचार्य समंतभद्र स्वामी के प्रति जो बहुमान था, जो उनके प्रति सम्मान था, जो आस्था हृदय में थी, आंखों से देख करके कुछ तो अंतर पड़ता है। सुने हुए पर जो श्रद्धा होती है, वो देखे हुए पर उसमें कुछ 4 चांद तो लगते ही हैं। 2 बार गए, मोहन पुजारी उसका नाम था, पैर उसके थोड़े दुर्घटनाग्रस्त हो चुके थे, तो फिर उसने कुछ अपने बारे में भी बताना प्रारंभ किया। हमने सोचा कि चलो सुन लो, इसने अपने को मौका दिया है वहां पर उस स्थान को दिखलाया, तो अपन सुन लेते हैं इसकी कहानी भी। उसने अपनी कहानी सुनाई फिर, तो हृदय में सद्भावना रखने से कुछ होता तो है। अब इससे अधिक हम क्या कहें, अपने जीवन के हमने 2 घटना आपके सामने रखी है, तो अगर अपन अपने निर्मल भावों से अरहंत भगवान की भक्ति करें और भगवान में जो दोष नहीं है उसको भगवान का गुण मानकर अपन भगवान की आराधना छोड़ दे, जैसे व्यवहार नहीं से भगवान अदाता नहीं है और आप उनको अदाता मान करके उनकी आराधना कर रहे हैं, तो इस धारणा को हटाकर अपन उनको जिस अपेक्षा से वो दाता है उस अपेक्षा से दाता स्वीकार करते हुए चले। और कभी कदाचित ऐसी स्थितियां भी आती है सम्यक दृष्टि के जीवन में, भले ही वो स्वार्थी नहीं है, भले ही वो याचक नहीं है, भले ही वो हमेशा प्रार्थना नहीं करता बैठता, वो अधिकतर स्तुतियां ही करता है भगवान की, कभी कभी प्रार्थना करता है, और सामान्यतः वो प्रार्थना ऐसी करता है कि मेरे को विशुद्धि प्राप्त, मेरा मन पवित्र हो, जैसे समंतभद्र आचार्य महाराज ने उसमें किए ना स्वयंभू स्तोत्र में, पुनातु चेतो मम नाभिनंदनो, आदिनाथ भगवान मेरे मन को पवित्र करो, ऐसी प्रार्थना की है उन्होंने। लेकिन कभी संकटों की स्थिति में जब भक्त बिल्कुल असहाय हो जाता है, तब वो भगवान से कोई अलग प्रकार की प्रार्थना भी कर लेता है और उसकी प्रार्थना नियम से सफल होती है। प्रार्थना वो वस्तु है जो कभी निष्फल नहीं होती, बशर्ते वो प्रार्थना हो, वो हृदय से होती है। जैसे महापुराण में एक वृत्तांत आता है जय कुमार सुलोचना का, सुलोचना ने अन्न जल त्याग कर जिनालय में भगवान के सन्मुख खड़े होकर तब तक कायोत्सर्ग का संकल्प किया था और भगवान से उसने प्रार्थना की थी, हे भगवान मेरे स्वामी की रक्षा करना, क्योंकि चक्रवर्ती के पुत्र के साथ जय कुमार का युद्ध हो रहा था। अर्क कीर्ति के साथ युद्ध हो रहा था, वो कायोत्सर्ग में खड़ी हुई थी, जब तक मेरे स्वामी सुरक्षित लौट कर नहीं आ जाते तब तक मैं यहीं कायोत्सर्ग में खड़ी रहूंगी, बैठूंगी भी नहीं, और मेरे अन्न जल का त्याग रहेगा। तो जब तक युद्ध चला तब तक वैसी स्थिति रही, लेकिन उसकी प्रार्थना निष्फल नहीं हुई। जय कुमार चक्रवर्ती के पुत्र को पराजित करके लौटा और आगे सब मंगल हो गया। तो ऐसी प्रार्थना भी सम्यक दृष्टि जीवों के द्वारा होती कदाचित। जब लक्ष्मण को शक्ति लगी थी तब सीता जी ने भी यही प्रार्थना की थी, हे भगवान मेरे देवर की रक्षा करना। संपूर्ण वनवास काल में जब से हम अयोध्या से निकले हैं उन्होंने मेरी ऐसी सेवा की है जैसी सेवा कोई बिरला पुत्र अपनी मां की करता है। उनकी रक्षा करना, तो ऐसी प्रार्थनाएं भी जिनेंद्र भगवान से की जा सकती है। ये कोई आगम विरुद्ध या सिद्धांत विरुद्ध पद्धति नहीं है। सराग सम्यक दृष्टि में इस प्रकार का अनुराग रहता है सांसारिक वस्तुओं के प्रति, और वो जब असहाय होता है तो जिनेंद्र देव से प्रार्थना कर भी लेता है। और ये तो तब पता चलता है जब संकट सिर के ऊपर मंडरा रहा हो, तब पता चलता है कि ये जो मैंने शास्त्र पढ़ करके रखे और जो मैं मुंह से बोलता हूं वो क्या है। और फिर परिस्थिति जब सिर पर आती है तब क्या होता है, तब पता चलता है। तो सो देवो, वो अरहंत देव हैं जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्रदान करते हैं। दूसरे चरण में उसी बात को दोहराया गया है कि भगवान के पास धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों हैं। सो देई जस अथिदु, जिसके पास है वो देता है। क्या क्या है भगवान के पास? अथो संपदाएं हैं, धम्मो धर्म है, यह शब्द से काम है, पवज्जा यानी दीक्षा, क्योंकि मोक्ष दीक्षा से प्राप्त होता है ऐसी मान्यता है, केवल विचारों से नहीं बल्कि द्रव्य क्षेत्र काल और भाव चारों के समन्वय से, चारों के तालमेल से मुक्ति की प्राप्ति होती है। और उस प्रव्रज्ञा से वह ज्ञान भी होता है जो मोक्ष में साधक है। तो इस तरह अपन ने ये समझा कि अरहंत भगवान से बढ़कर कोई दाता नहीं है। और यदि अपने को प्रार्थना करनी ही है, विशेष परिस्थिति की बात अलग है, वो सकाम भक्ति की बात अलग है, लेकिन जब अपना सामान्य परिस्थिति में अपन है तब अपन निष्काम भक्ति कर रहे हैं, तब क्या प्रार्थना करेंगे। तो उस प्रार्थना के विषय में हमने पांच बातें सोची थी कि अपन भगवान से पांच प्रार्थनाएं कर सकते हैं। हे भगवान मुझे क्षमा प्रदान कीजिए। भगवान से अपन क्षमा की प्रार्थना कर सकते हैं। मैं बहुत गलतियां करता रहता हूं, मेरा मन अभी कषायों से मुक्त नहीं है। मैं प्रयत्न तो करता हूं लेकिन फिर भी कभी कभी संस्कारों का जोर, संस्कारों का बल मुझ पर हावी हो जाता है और मैं मन वचन काय से अयोग्य प्रवृत्ति कर बैठता हूं। हे प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। सच्चे हृदय से क्षमा मांगने पर आंखों से अश्रुपात होता है। ये आंसू अनेक प्रकार के होते हैं, अपनी पीड़ा के आंसू सबकी आंखों से बह चुके हैं। दूसरों की पीड़ा के आंसू संतों की आंखों से बहते हैं, अथवा जो हृदय वाले जीव हैं उनकी आंखों से बहते हैं, जिनके अंदर संवेदना है, करुणा है, सहानुभूति है, उनकी आंखों से बहते हैं। प्रसन्नता के भी आंसू होते हैं, भक्ति के भी आंसू होते हैं, पश्चाताप के भी आंसू होते हैं। तो भगवान से क्षमा मांगते समय पश्चाताप के आंसू आंखों से निकले तो कुछ पाप तो गल कर उन आंसुओं के माध्यम से बाहर हो जाएगा। फिर भगवान से और क्या मांग सकते हैं? तो हे भगवान, मुझे भावों की शुद्धि प्रदान कीजिए। मेरे भाव बीच बीच में अशुद्ध हो जाते हैं, हे प्रभुवर, हे जिनवर, मुझे भावों की शुद्धि प्रदान कीजिए। तीसरी प्रार्थना क्या कर सकते हैं? तो हे जिनेन्द्र देव, मुझे संकल्प निभाने की शक्ति प्रदान कीजिए। मैं दुर्बल हो जाता हूं बीच बीच में, तो प्रभु आप में अनंत शक्ति है, आप मुझे शक्ति देंगे तो मैं शक्ति संपन्न हो जाऊंगा, लेकिन आपकी शक्ति घटेगी नहीं। मुझे संकल्प निभाने की शक्ति दीजिए। और क्या प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से? तो ही प्रभु, मुझे शांति प्रदान कीजिए। बहुत दुर्लभ है ये प्रार्थना, ये उत्तरोत्तर बिरले जीवों के अंदर से ये प्रार्थना के भाव प्रादुर्भूत होते हैं। क्षमा के भाव आना भी बहुत कठिन है, आंखों से आंसू आना बहुत दुर्लभ है। भावों की शुद्धि, संकल्प निभाने की शक्ति, मन की शांति, और अंतिम प्रार्थना, हे प्रभु मुझे आत्मा का आनंद प्रदान कीजिए। आत्मा का आनंद न होने के कारण मैं सांसारिक सुखों में भटक जाता हूं। तो ये पांच प्रार्थनाएं की जा सकती है। और भक्ति का आनंद तो भक्त जानता है, वो कभी भगवान के सामने रोता है, कभी कभी मुस्कुराता भी है, कभी कभी बातचीत करता है। वो एकांत में जब कोई नहीं होता था, उसको लगता है कि अरे अब तो मुझे बातचीत करने का मौका है, सबके सामने करूंगा तो मुझे पागल समझेंगे। बातचीत भी करता है और फिर उसको कभी कभी सुनाई भी देता है, वहां से उत्तर सुनाई देता है। वो कुछ पूछता है और लगता है कि अरे भगवान ने उत्तर दिया, अपने अंदर आते हैं वो उत्तर। ऐसा लगता है कि फिल्टर होकर के कहीं से मुझे समाधान मिल रहा है मेरे प्रश्नों का। ये भक्ति का जगत बहुत अद्भुत है, जो इसकी गहराई में गया है वही उसको समझ सकता है। और इसकी गहराई में जो सरल हृदय हैं और जो अहंकार से बहुत दूर रहते हैं, मान बड़ाई नाम का जिनको लोभ नहीं है, वो बड़ी सुगमता से भक्ति की जगत में प्रवेश कर सकते हैं। ओम नमः। ओम नमो रहते भगवते श्रीमते अरहते परम भट्टारकाय महादेवाधिदेवाय जिनेन्द्र देवाय अर्घ्यम निर्वपामीते स्वाहा। ओम ऐं अर्हं सर्वज्ञ समुत्पन्नायै दिव्यध्वनिरूपायै स्याद्वाद कीर्तनायै अंगांग बाह्य भावितायै केवल ज्ञान कार्य कारणायै केवल श्रुत केवल प्रज्ञप्तायै सुविशुद्ध सम्यक दर्शन तिलकायै सम्यक चारित्र वस्त्राभरणायै जगन्मातृ स्वरूपायै भगवती जिनवाणी सरस्वती देव्यै ह्रीं श्रीं नमः अनर्घ्यपद प्राप्तये अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रूं ह्रौं ह्रः आचार्य उपाध्याय सर्वसाधुभ्यः अनर्घ्य पद प्राप्त ये अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। देवशास्त्र गुरुभ्यो नमो नमः। जैनम जयतु शासनम।